ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। बुद्धि कहां चलनी चाहिए? बेहद सर्विस की के लिए जो है ना बुद्धि चलनी चाहिए। हद में नहीं, अपने परिवार की, अपने कॉलोनी की, अपने घर की, इनकी सेवा करूं नहीं, मुझे किसकी सेवा करनी है? बेहद की, सर्व आत्माओं का कल्याण हो, ऐसी प्लानिंग करनी है, ऐसी सोचना करनी है, ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ। सृष्टि चक्र का चित्र जिसके कांटों में रेडियम हो, तब तो इतने साधन नहीं थे। आजकल तो बिजली की भी, लाइट के भी बहुत अच्छे अच्छे बोर्ड बन जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी घड़ियां बन जाती हैं। रेडियम क्या होता है, किसको मालूम है? रेडियम भूल गए?
आपने दिया था ना आपकी विदाई में घड़ी,
वो जो घड़ी है वो तो वो अलग चीज है। रेडियम, रेडियम सिर्फ रामचंद्र भाई बता सकते हैं। रेडियम, पहले घड़ी आती थी रेडियम वाली, क्या कैसे पता लगता था रेडियम की घड़ी है ये? वो रात को अंधेरे में चमकती है, रेडियम जो होता है वो अंधेरे में चमकता है। आजकल तो बिजली की घड़ियां सारी मोबाइल में भी लाइट से चमकती है, तो पहले जो घड़ी होती थी ना रात को भी सुइयां दिखाई दे जाए तो पता लग जाए कि अभी क्या टाइम है, बिजली जलाने की जरूरत नहीं है, तो उस टाइम वो रेडियम की घड़ियां आती थी। तो बाबा ने भी उसी रेडियम शब्द को यहाँ पर प्रयोग किया है कि ऐसी बड़ी, मतलब जो सृष्टि चक्र का चित्र है वो बड़ा बड़ा बनाओ, और इसके जो कांटे है ना, सृष्टि चक्र में कांटे लगे हुए ना दो सुइयां, वो जो है ना रेडियम वाली बनाओ, ताकि दूर से अंधेरे में भी पता लगे कि ये सृष्टि का अंत अब आने वाला है, ये सुई 12 पर पहुंचेगी और सृष्टि क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। दूर से चमकता रहे ताकि उनको ध्यान जाए, क्योंकि जो चीज चमकती है उधर ध्यान जाता है। आजकल तो नमल टेलीविजन की दीवार आ गई है पूरी की पूरी, उसमें भी बड़ा बड़ा दूर से ही देखते हो रंगीन। रात को बाहर जाओ हाईवे पे तो आपको दिखाई देगा बड़े बड़े कंपनी के बोर्ड दूर से दिखाई दे रहे होते हैं, कितने बड़े बड़े बना के रखे हुए। तो ऐसे बाबा चाहते हैं सृष्टि चक्र का चित्र बड़ा बड़ा बनाओ, और ताकि दूर से उनको समझ में आए क्या भी ये सृष्टि खत्म होने वाली है, परिवर्तन होने वाली है, अब हम सबको घर जाना है। प्रश्न, सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? सेवा फैले, ज्यादा से ज्यादा आत्माओं तक बाबा का ज्ञान पहुंच सके, उसके लिए हम कौन सा तरीका अपनाएं, कौन सी विधि अपनाएं, ये युक्ति सोचो। जो जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए, और सेंटर वाले भाई जितने भी सेंटर हैं आसपास के, उनको देखना चाहिए कि कोई बहन कोई भाई होशियार हैं, महारथी हैं, जो ज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं, उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहें, और महारथी भाई बहनों को क्या कह रहे हैं कि आप क्या करें, चक्कर लगाते रहें, सभी सेंटरों पर जाएं, तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। उन भाई बहनों को कोई ज्ञान की बात समझ में नहीं आ रही है तो आप उनको स्पष्ट करें, उनके मन में कोई मूझना है जो ज्ञान अच्छी तरह समझा सकते हैं तो वहां जाके उनको समझाएं, तो वो जो ढीले हो जाते हैं उनके अंदर क्या आ जाती है, चुस्ती आ जाती है, तो वो औरों को भी समझाने में लायक बनेंगे। मतलब सबको ज्ञान समझाने के लायक बनाने के लिए ये युक्तियां रचनी चाहिए, ताकि सभी भाई बहनों को, कोई कई बार कोई भाई बहन को कोई बात समझ में नहीं आती तो वो रुक जाता है, कहते हैं पता नहीं क्या हो, उनके डाउट्स क्लियर हो जाए तो वो रुकेंगे नहीं, तो वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं सब समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा, हम दूसरे भाई बहन को बुलाएंगे तो उनकी इज्जत बढ़ जाएगी और हमारा मान कम हो जाएगा, नहीं। बच्चों को कभी भी दे अभिमान में नहीं आना चाहिए। बच्चों को कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। महारथियों का क्या रखना चाहिए? बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। गीत, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त न ठहरेगा। ओम शांति। घड़ी का नाम सुना, घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। वो है हद की घड़ी जो 12 घंटे 24 घंटे में चक्कर पूरा कर लेती है दो, ठीक है क्या नहीं? परंतु बाबा कहता है क्या याद आना चाहिए? बेहद की घड़ी। ये है बेहद की घड़ी। कौन सी है बेहद की घड़ी? सृष्टि चक्र। इसमें सारी बुद्धि से समझने की बात है। इस सृष्टि चक्र में बुद्धि से समझने की बातें हैं। उनका भी बड़ा कांटा और छोटा कांटा है। एक छोटा कांटा है और एक बड़ा कांटा है। छोटा कांटा तो 12 पर पहुंचा दिया, बड़ा कांटा थोड़ा सा इधर साइड पे खड़ा कर दिया। हाँ जी, सेकंड का बड़ा कांटा चलता रहता है और इसमें तीसरा एक कांटा सेकंड का भी बनाया हुआ था, वो चलता रहे ताकि उनको ये रहे कि घड़ी चल रही है। लाइन समझ में आ रही है? तो मैं इसमें नहीं लगी हुई, परंतु बाबा कह रहा है मतलब घड़ी ऐसी बनाओ जिसमें मिनट वाली सुई भी हो, घंटे वाली सुई भी हो, सेकंड वाली सुई भी हो, सेकंड वाली सुई चलती रहे ताकि दूर से उनको लगे कि घड़ी चल रही है, भाई घड़ी रुकी हुई नहीं है। परंतु मिनट वाली सुई आगे नहीं हिलनी चाहिए, मिनट वाली सुई आगे नहीं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? तो मतलब कहने का है कि क्योंकि सेकंड वाली सुई के हिसाब से 12 पर आ गई तो विनाश हो जाना चाहिए। अब रात के 12 बजे यानी रात पूरी हुई, फिर दिन शुरू होना है। ये बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए? इसमें कांटे जो बनाए जाएं उसमें रेडियम भी देना चाहिए जो दूर से चमकता रहे। घड़ी तो अपने आप समझाती है, घड़ी तो खुद बताती है। कोई भी नया आए तो घड़ी आकर देखे, बुद्धि भी कहती है बरोबर कांटा अंत में आकर पहुंचा है, बस मिनट वाली सुई एकदम साथ आ गई है। कोई भी समझ सकता है कि विनाश जरूर होना चाहिए। फिर है सतयुग की आदि, सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं, सतयुग में क्या होता है? बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं। तो इतनी सब आत्माएं जरूर वापस जाती भी होंगी। चित्रों पर समझाना है बहुत सहज। ऐसी घड़ी कोई बनाए तो बहुत खरीद करके भी घर में रखें। इन पर समझाना है। ये कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है, अनेक धर्म भी हैं, विनाश भी सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अब इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी सतयुग की बादशाही कैसे मिली? जरूर बाप द्वारा मिली होगी, जरूर बाप द्वारा मिली होगी। पतित पावन आते ही हैं पतित दुनिया में, संगम पर, पावन दुनिया में तो बाप को आना नहीं है। ये गोले पर समझाने के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास बात है और इस पर समझाना किसको भी बड़ा सहज है। जिनके पास पैसे बहुत हैं वो तो आर्टिस्ट को झट ऑर्डर दे, झट चीज तैयार हो जाए, बस ऑर्डर करे और चीज तैयार हो जाए। गवर्नमेंट का काम तो इतने में हो जाता है, यहाँ तो मुश्किल कोई काम करते हैं। कोई अच्छा आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो वे शोभता भी है। आजकल आर्ट का मान बहुत है, डांस का आर्ट, नृत्य करने की भी कला है ना, कितना दिखाते हैं, समझते हैं पहले ऐसे डांस होते थे, परंतु ऐसे कोई है नहीं, ऐसे कोई है नहीं। तो ये बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए। कलर भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता है। पतित पावन, कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता, पतित पावन कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता, मनुष्य पतित है ना तब तो गाते हैं, पावन दुनिया भी स्वर्ग है, मनुष्य तो नहीं समझते कि श्री कृष्ण ही श्याम है। फिर सुंदर बनता है इसलिए नाम पड़ा है श्याम सुंदर। हम भी पहले नहीं समझते थे, हम भी पहले नहीं समझते थे, अभी बुद्धि में है, बरोबर काम चिता पर बैठने से काला हो जाता है, काम चिता पर बैठने से काला हो जाता है, अर्थात आत्मा पतित हो जाती है। ये भी स्पष्ट करके लिखना है, वर्षा देते हैं परम पिता परम आत्मा और श्राप देते हैं रावण। मनुष्यों की बुद्धि फिर चली जाती है रघुपति राघव राजा राम तरफ, परंतु राम तो है परम पिता परमात्मा, राम तो है परम पिता परम आत्मा। ये सब बुद्धि चलाकर चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल अपने को भगवान तो सब कहते रहते हैं, तुम जानते हो बाप तो एक ही है, बाकी हम सब आत्माएं परम धाम में परम आत्मा के साथ जाकर रहेंगी, परमात्मा के साथ जाकर रहेंगी। उस समय बाप भी ब्रह्मांड का मालिक, हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। फिर बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूं, और भल कोई कितना भी बड़ा राजा हो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। बाप तो विश्व का मालिक बना, बाप तो विश्व का मालिक बना बना रहे हैं, तो ऐसे माता पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए, ऐसे माता पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। उनकी श्रीमत मशहूर है, उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते हैं, श्रीमत का पूरा पालन करते हैं। अभी अगर श्रीमत पर पूरा चले तो श्रेष्ठ बन जाए, तो श्रेष्ठ बन जाए। कितना माथा मारना पड़ता है, कितना माथा मारना पड़ता है, जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा, पुरुषार्थ चलता रहेगा। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, वे भी रुद्र यज्ञ करते हैं शांति के लिए, उससे तो शांति हो ना सके, शांति हो ना सके। बाप का तो एक ही यज्ञ है, दुनिया वाले कितने बड़े बड़े रुद्र यज्ञ कर लें, दुनिया में कोई शांति आ नहीं सकती, क्योंकि किसी का मन सुधर ही नहीं सकता। सामग्री तो जला सकते हैं, देसी घी के टीन तो जला सकते हैं, परंतु किसी का मन तो नहीं बदल सकते ना। जब तक मन नहीं बदलेगा, विचार नहीं बदलेंगे, वृत्ति नहीं बदलेगी, तो दुनिया तो नहीं सुधर सकती ना। जिसमें सारी सामग्री स्वाहा हो जाती है और सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती रहती है, वे कितने यज्ञ रचते हैं, वे कितने यज्ञ रचते हैं, फायदा कोई नहीं, फायदा कोई नहीं। तुम बच्चे हो नॉन वायलेंस, पवित्रता बिगर कोई स्वर्ग में जा ना सके, पवित्रता बिगर कोई स्वर्ग में, ये है पिछाड़ी का समय, पतित दुनिया, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया, 100% अपवित्रता, 100% अपवित्रता, अशांति, दुखी, रोगी, चारों तरफ दुखी दुख, ये सब लिखना पड़े। और फिर स्वर्ग में है श्रेष्ठाचार्य, 100% पवित्रता, सुख शांति निरोगी, वे रावण का श्राप, यह है शिव बाबा का वर्षा, यह है शिव बाबा का वर्षा। पूरी लिखत होनी चाहिए, भारत फलाने समय से फलाने समय तक श्रेष्ठाचारी था, फिर फलाने समय से भ्रष्टाचारी बना है। लिखत ऐसी हो जो देखने से समझ जाए, समझाने से भी बुद्धि में नशा चढ़ेगा, समझाने से भी बुद्धि में नशा चढ़ेगा। इस धंधे में ही रहने से फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। वे सर्विस 8 घंटा करते हैं तो ये भी 8 घंटा करनी चाहिए। सेंटर पर बच्चियां जो हैं उनमें भी नंबरवार हैं, कोई को तो सर्विस का बहुत शौक है, बहुत शौक है, जहां तहां भागते रहते हैं। कोई तो एक ही जगह पर, कोई तो इतना भागते रहते हैं, और कोई तो फिर एक ही जगह पर आराम से बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। उनको ऑलराउंडर नहीं कहेंगे, उनको ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। महारथियों को तो कुछ समझते नहीं, महारथियों को तो कुछ समझते नहीं है, तो सर्विस भी फिर क्या हो जाती है, सर्विस भी ढीली हो जाती है, सर्विस भी ढीली हो जाती है। बहुतों को अपना अहंकार बहुत रहता है, हमारा मान हो, हमारी इज्जत हो, दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा, हम अपने सेंटर पर किसी और को बुलाएंगे, कहेंगे वो भाई अच्छा है, हमारी बहन अच्छी, वो बहन अच्छी है, कितना अच्छी तरह समझाती है। ये नहीं समझते कि महारथी तो मदद करेंगे, अपना अहंकार रहता है। ऐसे भी बुद्धू हैं, ऐसे भी कौन है, बुद्धू हैं। बाप कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है, बाबा के पास समाचार तो आते रहते हैं ना, बाबा हर एक की रग को समझते हैं। ये बाबा भी अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा भी अनुभवी है, कौन कह रहे हैं, शिव बाबा। तो ये गोले की समझानी बहुत अच्छी है, ये समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी व्यंग मार्ग की हो जाएगी, तुम्हारी सर्विस अच्छी व्यंग मार्ग की सर्विस। व्यंग मार्ग की सर्विस किसे कहते हैं, व्यंग मार्ग, व्यंग किसे कहते हैं, व्यंग कहते हैं पक्षी को, पक्षी जो है एक स्थान से उड़ता और सीधा दूसरे स्थान पर बैठ जाता है, उसके रास्ते में गड्ढे आए, उसके रास्ते में ऊबड़ खाबड़ रास्ते आए, पानी आए, कुछ भी आए, उसको वहां पहुंचने में कोई रुकावट नहीं, वो एक पहाड़ की चोटी से उड़े और दूसरी पहाड़ की चोटी पर सीधा पहुंच जाए। और पैदल चलने वाले पहले नीचे उतरेंगे फिर ऊपर चढ़ेंगे, प्रॉब्लम है ना, उनके रास्ते में पहाड़ आ गया तो ऊपर चढ़ेंगे फिर उतरेंगे तब जाकर पल्ली तरफ पहुंचेंगे। तो व्यंग मार्ग की सर्विस का मतलब होता है जिसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए, पहले से ही उसने सारा फुल प्रूफ प्रोग्राम बनाया हुआ हो, कोई हर्डल कोई रुकावट नहीं आए, समझ गए। व्यंग मार्ग की सर्विस माना ऐसी सेवा जिसमें कोई रुकावट ना आए। अभी तो चीटी मार्ग की सर्विस है, चीटी मार्ग की सर्विस क्या होती है, धीरे धीरे चल रहे हैं, चलो आज एक भाई को पकड़ के लाए, उसको कोर्स कराया, चलो आप कोई और ढूंढो भाई, फिर कोई एक और ढूंढा, अरे भाई एक साथ सारे पकड़ो ना, बड़ा कोई प्रोग्राम करो और उसमें सबको एक साथ संदेश दे दो, मतलब बड़ा प्रोग्राम करने के लिए किसी मतलब अच्छे व्यक्ति को बुलाओ, जिसके बहाने से सारे लोग इकट्ठे हो जाए और फिर उनको संदेश दो। संदेश तो आपने देना है ना, इसलिए बुद्धि चलती नहीं। देहाभिमान होता है ना, दूसरे को बुलाने की सोचेंगे नहीं, बुद्धि चलेगी नहीं। अभी ये है विहंग मार्ग की सर्विस, सर्विसेबल बच्चों का माथा चलता रहेगा। क्या क्या बनाना चाहिए, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। अभी कलयुग है, सतयुग स्थापन होता है, बाप ही सबको वापस ले जाएंगे। वहां है सुख और यहाँ है दुख, सब पतित हैं। पतित मनुष्य कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। ये सब है भक्ति मार्ग की कारोबार सिखलाने वाले गुरु, सब हैं भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई है नहीं। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल है ना, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। श्री कृष्ण को कभी जादूगर नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी श्याम से सुंदर बनाने वाला वो बाप है। समझाने का बड़ा नशा चाहिए, बाहर में जाना चाहिए। गरीब ही अच्छा उठाते हैं, सौकारों में उम्मीद कम रहती है, सौकारों में उम्मीद कम रहती है। सौ गरीब तो एक दो सौकार, पांच सात साधारण निकलेंगे। ऐसे ही काम चलता है सेंटरों पर, मतलब ऐसे ही मिलेंगे ना, एक दो अमीर होंगे, पांच सात साधारण होंगे, बाकी सब गरीब होंगे। ऐसे ही काम चलता है, धन की इतनी दरकार नहीं रहती। गवर्नमेंट ने देखा कितना बारूद बनाया है, कितना पैसा खर्च किया होगा बारूद बनाने में। दोनों समझते हैं विनाश हो जाएगा, हम विनाश को पाएंगे, तब मलूक शिकारी कौन बनेंगे। कहानी है ना, दो बिल्ले लड़े, मक्खन को मिल गया, बीच में बंदर को मक्खन मिल गया। तो श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, है ये स्वर्ग रूपी मक्खन। ये बातें मुश्किल कोई समझ सकते हैं। यहाँ 20-25 वर्ष रहने वाले भी, जो मधुबन में 20-25 वर्ष से रहने वाले भी कुछ भी नहीं समझते। क्या कह रहे हैं बाबा, 20-25 साल जिनको मधुबन में रहते हो गए हैं, ये साकार मुरली है, 69 से पहले की मुरली है। क्या 20-25 वर्ष ज्ञान में चलने से पर भी रहने वाले कुछ नहीं समझते। पहले भट्टी बनी, उसमें कितने आए, कितने चले गए, कितने छोड़कर चले गए। ब्रह्मा बाबा का अपना बेटा भी छोड़ करके चला गया। ड्रामा में कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। कौन ब्रह्मा बाबा की तो कोई और बेटी है ही नहीं,
ब्रह्मा बाबा की एक बेटी तो है,
निर्मल शांता है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। सूर्य बहन
मोहनी का मना रहे थे,
मोहनी दीदी,
मोहनी दीदी
ड्रामा में कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, अब भी ऐसे ही ऐसे हो रहा है। चित्र जितने बड़े होंगे उतना कोई को भी समझाना सहज होगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूरी है, झाड़ से पता पड़ता है भक्ति कल्ट कब से शुरू हुआ। झाड़ के जब पत्ते निकलना शुरू होते हैं, टहनियां निकलनी शुरू होती हैं, तो भक्ति शुरू होती है। ब्रह्मा की रात दो युग, फिर ब्रह्मा का दिन दो युग, मनुष्य तो समझते नहीं, फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में है परंतु प्रजापिता तो जरूर यहां ही होगा। कितने गुह्य राज हैं जो शास्त्रों में तो हो नहीं सकते। ये गुह्य राज दुनिया के किसी शास्त्रों में तो हो नहीं सकते। मनुष्यों ने सब उल्टे चित्र देखे, मनुष्यों ने सब क्या देखे, उल्टे चित्र देखे हैं, उल्टा ज्ञान सुना है। भक्ति मार्ग के चित्र क्या हैं? उल्टे। बताओ, सारे सीधे खड़े हुए हैं, बाबा कहता है उल्टे हैं, मतलब गलत, मतलब गलत। सारे भक्ति मार्ग के चित्र, मूर्तियां, किताबें सब क्या हैं?
गलत।
एक बाबा ठीक है, कौन समझाए? उल्टा ज्ञान, उल्टे चित्र सब, और ज्ञान भी उल्टा। फिर क्या करे, हमारे हाथ में तो है ही नहीं ना। ब्रह्मा को भी बहुत भुजाएं दी हैं, बाबा को
हाँ,
ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं दी हैं। ये जो भी शास्त्र आदि हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। ये कब से शुरू होती है दुनिया नहीं जानती। मनुष्य भक्ति कितनी करते हैं, समझते हैं, क्या समझते हैं? भक्ति बिगर भगवान मिल नहीं सकता, भक्ति के बिना भगवान मिल नहीं सकता, इसमें कोई शक है नहीं। तो जिन्होंने भक्ति की है उन्हीं को भगवान मिला है, जिन्होंने भक्ति नहीं की उन्हें भगवान मिल भी नहीं सकता। सबसे ज्यादा भक्ति की ब्रह्मा बाबा ने, फिर जिसने जितने जितनी भक्ति की है उतना जल्दी बाबा का ज्ञान सुनने के लिए।
एक लाइन कह रहा था, भक्ति का उल्टा ही
था, पता है ना, भक्तों के हाथ को पकड़ के रखना है वरना वो भाग जाएंगे। बच्चे को थप्पड़ भी मारना है और हाथ पकड़ के भी रखना है। मतलब बाबा जो है ना, बाबा युक्ति जानता है, वरना सारे बच्चे भगत बच्चे तो भाग जाएंगे। उन भगत बच्चों है नहीं, तो इसलिए बाबा क्या करता है, हाथ भी पकड़ के रखता है, थप्पड़ भी मारता है ताकि ये भाग ना जाए। वो बच्चों को भगाना भी तो नहीं चाहता ना। भक्ति बिगर भगवान मिल नहीं सकता, लेकिन जब पूरी दुर्गति हो, भक्ति करते करते जब उसकी पूरी दुर्गति हो जाए, क्योंकि भक्त जितनी भक्ति करते हैं उतना ही दुख बढ़ते जाते हैं, तो जब वो पूरी दुर्गति हो जाती है तब तो भगवान मिलेगा सदगति के लिए। ये हिसाब किताब तुम जानते हो। आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है। बाप कहते हैं ये वेद, ये उपनिषद, यज्ञ, तप, जप, पूजा, पाठ, ये सब क्या है? भक्ति। ये सब भक्ति मार्ग, ये सब खत्म होने हैं। सबको काला बनना है, बनना ही है, फिर गोरा बनाने बाप को आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग आता हूं, ना कि युगे युगे। बाबा कब आते हैं? कल्प कल्प के संगम युगे आता हूं, ना कि युगे युगे। यहां पर भी प्रिंट करने लिखने वाले से मिस्टेक हो गई है, दो बार लिखना है। कल्प कल्प के संगम युग, जब दो कल्पों का संगम युग आता है तब मैं आता हूं, ना कि युगे युगे। हर युग में मैं नहीं आता हूं, मैं सिर्फ एक ही युग है, मेरे आने से वो शुरू होता है और मेरे जाने से वो खत्म होता है। वो है सतयुग, कलयुग और सतयुग का संगम। दिखाते हैं कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, परशुराम अवतार, ये भगवान के अवतार हैं। फिर पत्थर भीतर में भी भगवान कैसे हो सकता है? फिर क्या है, कछुआ बना, मछली बना, परशुराम बना, ये सारे व्यास बना, दुनिया भर के भगवान बने। वाल्मीकि को भी भगवान कह देते हैं, व्यास को भी भगवान कह देते हैं, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर महाभारत और रामायण लिखते हैं। फिर पत्थर भीतर में भी भगवान कैसे हो सकता है? मनुष्य कितने बेसमझ हो गए हैं, बाप ने आकर कितना समझदार बनाया है। बाबा ने आकर क्या किया है, कितना समझदार बनाया है। महिमा भी करनी पड़े, महिमा भी करनी पड़े। परम पिता परम आत्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है और पवित्रता का सागर है। श्री कृष्ण की ये महिमा हो नहीं सकती। जो महिमा हम परम पिता परमात्मा की कर सकते हैं, वो महिमा श्री कृष्ण की हो नहीं सकती। कल भी कहा था, प्रेसिडेंट की महिमा हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं दे सकते, क्योंकि तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है। हर एक की अपनी अपनी वैल्यू है। परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। श्री कृष्ण की ये महिमा हो नहीं सकती। श्री कृष्ण के भक्त फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं कि सर्वव्यापी है। कितना चटक पड़ते हैं, उनसे निकाल कर फिर बाप का परिचय देते हैं। सब आत्माएं भाई भाई हैं, सब फादर थोड़े ही हो सकते हैं। परमात्मा की संतान है सारे, सारे परमात्मा बन जाएं तो फिर याद किसको करें भाई? गॉड फादर को बच्चे याद करते हैं। समझाने वाला भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए, जो समझाने वाला है उसकी बुद्धि भी बेहद की हो। बच्चों की बुद्धि हद में फंस पड़ती है, एक जगह ही बैठ जाते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वे बड़ी बड़ी ब्रांचेस खोलते हैं, जितना जो सेंटर्स खोले वो मैनेजर अच्छा। फिर सेंटर पर भी मदार है। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान। किसकी? ज्ञान सागर की। पॉइंट तो बहुत हैं, जो धारण कर समझानी है। सभा में चित्र रखे हों, जो सब देखें, घड़ी का चित्र, सृष्टि चक्र का बहुत अच्छा है। इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा चक्रवर्ती बनेंगे। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। घड़ी पर समझाना बहुत सहज है। घड़ी पर समझाना क्या है? बहुत सहज है। कितने पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते। कितना आते हैं पर तो लायक नहीं बनते हैं। अपने को मियां मिठू समझ बैठते हैं, बस हमें भगवान ने चुन लिया, अब हम स्वर्ग में चाहेंगे ही चाहेंगे।
नंबर गली के अंदर दुर्गा प्रेम मंदिर है, इसमें पूजा हो रही है। दुर्गा 36वां बर्थडे मनाया जा रहा है, उसमें 1,63,000 रूपए कलेक्शन में सुना दिया। जो लेख पर्चियां बना रहा है, कलेक्शन कर रहा था,
ठीक,
1,63,000 माइनर। और इतनी भीड़ है वहाँ, हाउसिंग बोर्ड से लेके और वहां तक जगह ही नहीं खड़ा होने के लिए। ऊपर लिखे पड़े दिल्ली से आए हैं, पंजाबी है आपकी भाई ने गायक।
अच्छी भक्ति पूरी हो उनकी जल्दी जल्दी। अपने को मियां मिठू समझ बैठते हैं, फालतू खुश होते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो कौन समझेंगे कि ये दानी है? दान भी अशर्फियों का करना चाहिए। दान किसका करना चाहिए, वो क्या होते हैं?
राजा महाराजों के टाइम की बातें, आज के अगर भी कोई जानता ही नहीं क्या है,
या पाई पैसे का। बाबा पूछते हैं दान अशर्फियों का करना चाहिए या पाई पैसे का। ये चित्र अंतों के आगे आईना है कि भक्ति का ज्ञान है पाई पैसा, जिसके लिए लाइनें लगी हुई हैं, परंतु वहां जाकर दान करना चाहिए बाबा की श्रीमत का। ये है अशर्फियां और वो है पाई पैसा। आईने में अपना मुख देखेंगे, पहले बंदर की शक्ल थी, बंदर की शक्ल माना बस पड़े हुए थे पीछे भगवान के, पहले बंदर की शक्ल थी, अभी मंदिर की शक्ल बन रही है, बन रही है मंदिर की शक्ल। मंदिर की शक्ल मतलब देवी देवताओं की शक्ल। पहले थे मांगने वाले भिखारी और अब बन रहे हैं मालिक, मंदिर के लायक जिनकी मूर्तियां रखी हैं। मंदिर में रहने लायक बनने का पुरुषार्थ करना है, यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया जो शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं। जो श्री मत पर नहीं चलते उनकी बुद्धि में कभी धारणा हो नहीं सकती। बाप कहते हैं प्रतिदिन तुमको गुहे गुहे ज्ञान बताता हूं, रोजाना बाबा क्या करते हैं, गुहे गुहे ज्ञान बताता हूँ, तो जरूर ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। कोई कोई प्रश्न उठाते हैं, आठ बादशाही कैसे चलेंगी, इस हिसाब से इतनी बादशाही होनी चाहिए। बाप कहते हैं तुम लोग इन बातों में क्यों पढ़ते हो, पहले तुम बाप और उनके वर्षे को तो याद करो, उस लायक तो बनो, वहां का जो रस्म रिवाज होगा वो चलेगा। बच्चे जिस रीति से पैदा होते हैं, होते होंगे उस रीति से होंगे वहां जाकर, तुम क्यों यहां टेंशन ले रहे हो, पहले वहां जाने के लायक तो बनो, तुम क्यों इसमें जाते हो। विकार की बात मुख पर क्यों लाते हो, कहते हैं जी विकार के बिना वहां भी बच्चे कैसे पैदा होंगे। अरे तुम वहां निर्विकारी हैं, उनके लिए तुम विकार की बात क्यों लाते हो। ये चित्र किसको सौगात में देना बहुत अच्छा है, ये गॉड फादरली गिफ्ट है, ये भगवान का क्या है, गिफ्ट है। ऐसी गॉड फादरली गिफ्ट कौन नहीं ले जाएंगे, सबको दोगे तो कौन नहीं ले जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हैं और लोग और जिसका लिटरेचर आदि नहीं लेते, उनको अपने धर्म का नशा रहता है। बाप तो कहते हैं देवता धर्म सबसे ऊंच है, वे समझते हैं कि हमको इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं, परंतु ये तो ज्ञान की बातें हैं, ये तो ज्ञान की बातें हैं। जो ज्ञान उठाते हैं, जो ज्ञान उठाते हैं वही बाप से वर्षा पाते हैं, जो ज्ञान नहीं उठाएंगे उन्हें वर्षा क्यों कर मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, विश्व का मालिक बनाने वाले मात पिता पर दिल से कुर्बान जाना है, दिल से कुर्बान जाना है, उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल श्रेष्ठ बनना है। अच्छी रीति चलो तो क्या बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे। नंबर दो, अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है, अहंकार में नहीं आना है, अशर्फियों का दान करना है, मतलब ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये भक्ति की बातें क्या हैं, पाई पैसा, ये भक्ति की बातें नहीं सुनानी है। भक्ति की बातें नहीं सुनानी है। ज्ञान दान करने में महारथी बनना है। 8 घंटा ईश्वरीय सेवा जरूर करनी है। सबको जाकर सच समझाना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। वरदान सर्व प्राप्तियों की अनुभूति, वरदान है सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई देना है। हमें सब कुछ मिल गया फिर हमारे पास माया नहीं रहेगी ना, अज्ञानता नहीं रहेगी, अभाव नहीं रहेगा, पाना था सो पा लिया। जब ये हो गया फिर हम ये तो नहीं कह सकते नहीं मेरे पास ये नहीं है, माया तो है मेरे पास कमी है। तो बधाई पाने वाले खुश नसीब, क्योंकि जिसको सब कुछ मिल गया तो वो क्या है, खुश नसीब आत्मा भव। जिनका साथी सर्वशक्तिमान बाप है उनको सदा ही सर्व प्राप्ति है, उसको कोई चीज हो नहीं सकती जो उसके पास प्राप्त ना हो। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। वो कहे कि मेरे को ये पता नहीं था, पता नहीं था तो माया थी, खाली जगह थी। किसी भी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में, प्राप्तियों की अनुभूति में रहे माया को विदाई देते हैं उन्हें बाप द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है, हर कदम में बधाई मिलती है। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं, जो सोचा नहीं वो पा लिया, जो सोचा नहीं वे पा लिया। बाप को पाया, सब कुछ पाया, ऐसी खुश नसीब आत्मा हो, ऐसी खुश नसीब आत्मा हो। स्लोगन है स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। स्वचिंतन माना मैंने अपने आप को श्रेष्ठ कैसे बनाना है, प्रभु चिंतन माना कि परमात्मा आकर हमें कैसे श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा, व्यर्थ की बातें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।